दिन भर तारीख 16 फरवरी दिन शुक्रवार। मैं हूं मोहन लाल शर्मा। कावेरी जल विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, तमिलनाडु का पानी घटा, कर्नाटक को मिला ज्यादा पानी।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 10 टीएमसी तो हम कर्नाटक को एडिशनल लोकेशन कर सकते हैं, क्योंकि तमिलनाडु के पास 20 टीएमसी है और उसी हिसाब से बेंगलुरु के लिए 4.75 टीएमसी रखा हुआ।
ईरानी राष्ट्रपति हसन रूहानी ने मक्का मस्जिद में कहा, मतभेद मिटाए मुसलमान। क्रिकेटर संजय मांजरेकर की कहानी, कैसा होता था मैच से पहले कप्तान के साथ ड्रेसिंग रूम का माहौल।
अजहरुद्दीन थोड़े से सॉफ्ट स्पोकन आदमी थे, कभी कभी ऐसा होता था कि वो बात कर रहे और किसी को सुनाई भी नहीं दे रहा, लेकिन हम सब ऐसे मुंडी हिला रहे थे कि ठीक है आप जो कह रहे हैं हमको पता चल रहा है।
सुनिएगा विवेचना, लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार मोहम्मद शाहिद से। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार को आज निर्देश दिया कि वो अपने अंतर्राज्यीय बिली गुंडलू बांध से कावेरी नदी का 177.25 टीएमसी पानी तमिलनाडु के लिए छोड़े। फैसले में ये स्पष्ट किया गया कि कर्नाटक को अब हर साल 14.75 टीएमसी पानी अधिक मिलेगा, जबकि तमिलनाडु को 404.25 टीएमसी पानी मिलेगा। पंजाब नेशनल बैंक धोखाधड़ी मामले के बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने हीरा व्यापारी नीरव मोदी और उनके कारोबारी साझेदार मेहुल चौकसी का पासपोर्ट 4 हफ्तों के लिए निलंबित कर दिया है। मंत्रालय ने उनसे इस पर 1 हफ्ते में जवाब मांगा है कि उनका पासपोर्ट रद्द क्यों नहीं किया जाए। अमरीका और तुर्की ने वादा किया है कि वो सीरिया पर तनाव कम करने के लिए मिलकर काम करेंगे, जिसके कारण उनके संबंध काफी खराब हो चुके हैं। अंकारा में बातचीत के बाद अमरीकी विदेश मंत्री रेक्स टिलरसन ने कहा कि विवादित हितों को सुलझाने के लिए एक तंत्र स्थापित किया जाएगा। दोनों के बीच विवाद का एक बड़ा कारण उत्तरी सीरिया में कुर्द लड़ाकों का है, जिन्हें अमरीका समर्थन करता है और तुर्की उन्हें अपने लिए सीधा खतरा बताता है। संयुक्त अमरीका तुर्की कार्यरत समूहों का मानना है कि इन जैसे तनावों पर बात होगी। हालांकि विश्लेषकों का कहना है कि ऐसा लगता है कि टिलरसन के अंकारा दौरे से काफी सफलता नहीं मिली है। वहीं तुर्की के विदेश मंत्री मेवलुत चावुशोलू का कहना है,
daha önce de söyledim, ilişkilerimiz kritik bir aşamada. Ya bu ilişkileri
जैसा कि मैंने पहले कहा है कि हमारे रिश्ते नाजुक मोड़ पर हैं, या हम अपने संबंधों को वापस ट्रैक पर लाएं वरना ये बिगड़ जाएंगे। बीती रात हमने जो इच्छा जताई है, हम अपने संबंधों को सामान्य करने के लिए सहमत हुए हैं। ये थे तुर्की के विदेश मंत्री मेवलुत चावुशोलू के शब्द। तुर्की की एक कोर्ट ने जर्मन तुर्की पत्रकार डेनिस यूजेल को रिहा करने का आदेश दिया है। उनकी हिरासत दोनों देशों के बीच राजनयिक तनाव का सबसे बड़ा कारण है। अभियोजन पक्ष ने एक मामला उनके खिलाफ दायर किया था, जिसमें उन्हें 18 साल जेल की सजा हो सकती थी। जर्मनी के विदेश मंत्री जिकमार गाब्रियल ने कहा है कि यूजेल पर जमानत को लेकर शर्तें नहीं लगाई गई हैं और वो तुर्की छोड़ सकते हैं। कुर्द अल्पसंख्यकों को लेकर लिखने के बाद जर्मन अखबार डी वेल्ट के संवाददाता यूजेल पर आतंकी प्रोपेगेंडा फैलाने के आरोप लगे थे। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने बीबीसी से कहा है कि सहायता संगठनों में यौन दुराचार को लेकर बिल्कुल भी बर्दाश्त न करने का दृष्टिकोण होना चाहिए। एंटोनियो गुटेरेश ने ब्रिटिश सहायता समूह ऑक्सफेम के स्टाफ द्वारा अनुचित व्यवहार के आरोप के बाद ये बात कही है। उन्होंने कहा कि यौन उत्पीड़न वैश्विक समस्या है जो विकास कार्यकर्ताओं के बीच भी फैली थी। उन्होंने ऑक्सफेम पर लगे आरोपों को गंभीर बताया, लेकिन उसके दान के काम का बचाव किया। उन्होंने कहा कि वो विश्वसनीय भागीदार है।
This is a very important battle. It will not be won in 2 or 3 days. We need consistent commitment.
ये बहुत महत्वपूर्ण लड़ाई है। ये 2 या 3 दिन में नहीं जीती जा सकती। हमें लैंगिक समानता के लिए प्रतिबद्धता की आवश्यकता है और उसी समय हमें यौन उत्पीड़न, दुर्व्यवहार और शोषण के लिए बिल्कुल भी बर्दाश्त न करने की नीति होनी चाहिए। ये थे संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेश के शब्द। सीरिया में राहत कर्मियों का कहना है कि दमिश्क के करीब विद्रोहियों के कब्जे वाले इलाके में रह रहे लाखों लोगों की मानवीय स्थिति अभी भी खराब है। पूर्वी गूटा क्षेत्र में जाने वाली संयुक्त राष्ट्र की एक टीम का कहना है कि उन्हें ऐसे कुछ परिवार मिले जिन्हें दिन में सिर्फ एक वक्त का खाना मिलता है। स्थानीय स्तर पर जो खाना है अधिकतर लोगों के लिए वो काफी महंगा है, टीके कम हैं और टाइफाइड बुखार के मामले पाए गए हैं। पूर्वी गूटा पर सरकारी सुरक्षा बलों का हमला होता रहा है और इलाके के विद्रोही लड़ाके दमिश्क पर रॉकेट हमला भी करते हैं। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की दूसरी सभा दिन भर में आपका स्वागत। इस कार्यक्रम को आप bbchindi.com के साथ साथ फेसबुक पर भी लाइव सुन रहे हैं। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा। जैसा कि समाचारों में आपने मोहम्मद शाहिद से सुना, तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच 115 सालों से चल रहे कावेरी जल विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए तमिलनाडु के हिस्से का पानी घटा दिया है। कर्नाटक को अब 14.75 TAC पानी फिट ज्यादा दिया जाएगा। ये विवाद दरअसल कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी के बीच पानी के बंटवारे को लेकर था। इस मामले पर कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल ने फरवरी 2007 में कावेरी ट्रिब्यूनल के फैसले को चुनौती दी थी। कर्नाटक चाहता था कि तमिलनाडु के जल आवंटन को कम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट आदेश जारी करे, जबकि तमिलनाडु का कहना था कि कर्नाटक का पानी कम किया जाए। इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस अमिताभ राय और जस्टिस खानविलकर की बेंच ने किया। कर्नाटक में कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होने हैं, इसलिए यह फैसला काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। फैसले पर कर्नाटक ने खुशी जताई है, जबकि तमिलनाडु ने इस पर कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की है। क्या था कावेरी विवाद और क्या है सुप्रीम कोर्ट का फैसला? बंगलुरु से इमरान कुरैशी की रिपोर्ट में सुनिए।
हर कोई सुप्रीम कोर्ट के आज के निर्णय से आश्चर्यचकित है। कर्नाटका में आश्चर्य इसलिए है क्योंकि उसको बहुत सालों बाद थोड़ा सा ज्यादा पानी मिला है। तमिलनाडु में आश्चर्य इसलिए है क्योंकि उसको उम्मीद बहुत थी कि कोर्ट के निर्णय से उसको ज्यादा पानी मिलेगा। दरअसल कावेरी पानी बंटवारे विवाद के ट्रिब्यूनल ने कर्नाटका को 270 TMC फीट पानी आवंटित किया था। ट्रिब्यूनल ने तमिलनाडु को 419 TMC फीट, केरला को 30 TMC फीट और पुडुचेरी को 7 TMC फीट दिया था। आज के निर्णय से कर्नाटका को 15 TMC फीट पानी ज्यादा मिलेगा। कर्नाटका के वकील ब्रिजेश कालापा ने बीबीसी को बताया,
कर्नाटका को और थोड़ा कम पानी देने की जरूरत है क्योंकि तमिलनाडु में जो ग्राउंड वाटर का अवेलेबिलिटी है वो 20 TMC से मेजरमेंट लिया था। अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 10 TMC तो हम कर्नाटका को एडिशनल एलोकेशन कर सकते हैं क्योंकि तमिलनाडु के पास 20 TMC है और उसी हिसाब से बेंगलुरु जो शहर है पानी का जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती जा रही है, तो इस वजह से जो है बेंगलुरु के लिए 4.75 TMC रखा हुआ और इस हिसाब से ये कंप्लीट जजमेंट होता है कि हमारा जो ओरिजिनल एलोकेशन 270 था वो थोड़ा बढ़ करके 284.75 हुआ।
तमिलनाडु के वकील और सरकार के तरफ से कोई बात करने के लिए तैयार नहीं था क्योंकि वो कोर्ट के 465 पेज का निर्णय पढ़ रहे हैं, लेकिन DMK के प्रवक्ता दोरई मुर्गन ने कहा,
इट इज अनफेयर फॉर तमिलनाडु, अनफेयर,
ये निर्णय अनुचित है। हमारे राज्य को तो करीबन 15 TMC फीट पानी मिलता रहा है। जो हमें पानी मिल रहा है वही बस नहीं आता है और उसमें से भी 15 TMC बंद कर दिया है। जाहिर है कि हमें भुगतना पड़ेगा। ये थे दोरई मुर्गन किशन। कर्नाटका की थोड़ी बहुत खुशी का कारण ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने उस बात को महत्व दिया कि बेंगलुरु के पीने के पानी के लिए उसने 4.5 TMC फीट पानी दिया जो ट्रिब्यूनल ने नहीं दिया था। कर्नाटका का मानना है कि वो नदी का ऊपरी राज्य होने के चलते उसको नुकसान उठाना पड़ा। तो क्या आज का निर्णय दोनों राज्यों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश है? हमने ये सवाल पानी के जानकार एस विश्वनाथ से पूछा।
हाँ, ये बात तो सही है क्योंकि नदी का निचला हिस्सा होता है वहाँ पे, जिसे हम डेल्टा कहते हैं, वहाँ पे हरदम जो उपभोक्ता होती है यानी जो उपजाऊ जमीन होती है वो वहाँ होती है, तो पहले पानी वहाँ दिया जाता है ताकि हम जो भी खाद्य पदार्थ निकाले वो वहाँ से ज्यादा निकाले। लेकिन जैसे जैसे ये शहरीकरण होने लगता है तो अपर राइपेरियन स्टेट जो हम कहने लगते हैं वहाँ पे डेवलपमेंट होने लगता है, तो अब थोड़ा पानी एग्रीकल्चर से निकाल के इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ देना पड़ता है। तो इस पेचीले सवाल को मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट ने ठीक ढंग से उत्तर दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने आज स्पष्ट तौर से ये नहीं कहा कि कावेरी मैनेजमेंट बोर्ड स्थापित हो। मैनेजमेंट बोर्ड को केंद्र सरकार के लिए छोड़ दिया है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट तौर से नहीं कहा है कि राज्यों को क्या करना होगा अगर मॉनसून फेल हुआ और कर्नाटका के पास पानी नहीं रहा। मतलब ये कि 1892 में जो विवाद शुरू हुआ वो फिर कोर्ट में जाता ही रहेगा। इमरान कुरैशी, BBC, बेंगलुरु।
तो सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के पानी का हिस्सा घटा दिया है। कर्नाटक को अब 14.75 TMC फीट ज्यादा पानी मिलेगा। ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने 3 दिन के अपने भारत दौरे की शुरुआत दक्षिण भारतीय शहर हैदराबाद से करते हुए फारस और हैदराबाद के 500 साल से ज्यादा पुराने सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रिश्तों की गर्माहट उजागर कर दी। रूहानी पहली बार 2013 में भारत आए थे। इस बार रूहानी कल हैदराबाद पहुंचे। आज रूहानी ने उन मकबरों का दौरा किया जहां कुतुब शाही सुल्तानों और शाही परिवार के दूसरे सदस्यों की कब्रें हैं। रूहानी ने मक्का मस्जिद में नमाज अता की और लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को अपने बीच के मतभेदों को खत्म करना होगा।
जमहूरी इस्लामी ईरान बदौलत ईरान मोतकद है।
हुकूमत इस्लामी जमहूरी ईरान का सिर्फ मकसद ये है कि सिर्फ और सिर्फ इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के जरिए आलम इस्लाम के तमाम मसाइल को हल किया जा सकता है।
हसन रूहानी ने क्या क्या कहा और जानकारी के लिए मैंने बात की हैदराबाद में मौजूद वरिष्ठ पत्रकार उमर फारूक से।
हसन रूहानी ने अपनी भारत यात्रा की शुरुआत कल हैदराबाद से की और आज हैदराबाद में ऐतिहासिक मक्का मस्जिद में उन्होंने मुसलमानों के धार्मिक सभा को संबोधित किया और जिसमें उनका ज्यादा जोर दो बातों पे था। एक तो उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में ये बात कही कि जो पश्चिमी देश हैं, खासकर अमेरिका है, वो इराक और शाम जैसे देशों में ये शिया सुन्नी मुसलमानों को आपस में लड़ाने की कोशिश कर रहा है और इस संदर्भ में उन्होंने भारत का उदाहरण दिया कि भारत में शिया सुन्नी मुसलमान मिलजुल के रहे हैं और फिर साथ ही अनेक दूसरे धर्मों के लोग भी यहाँ पर शांतिपूर्ण ढंग से अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं जो कि बहुत अहम बात है। तो इस संदर्भ में उन्होंने फिर एक बात जोर देकर कही कि शिया सुन्नी मुसलमानों को एकजुट रहना चाहिए ताकि वो जो बाहर की चुनौतियां हैं उसका वो मुकाबला कर सके। हैदराबाद को क्यों चुना, इसका ताल्लुक ईरान और हैदराबाद के लगभग 500 साल पुराने संबंधों से है। हैदराबाद में लगभग 200 साल तक कुतुबशाही राजाओं का प्रशासन रहा है। मोहम्मद कुली कुतुबशाह से हैदराबाद की स्थापना की थी और गोलकुंडा जो था यहाँ का राज्य उस पर 200 साल तक उन्होंने हुकूमत की और इन सब का संबंध, ये कुतुबशाही राजाओं का संबंध ईरान से था। उस दौर में जो मस्जिदों में खुतबे हुआ करते थे जुमा के, उसमें ईरान के बादशाह का नाम लिया जाता था। इस तरह के संबंध थे और आप ईरान की छाप हैदराबाद में हर जगह महसूस कर सकते हैं। जो मशहूर चार मीनार है और दूसरे ऐतिहासिक भवन है ईरान के जो नगर हैं, उनकी छाप आपको यहाँ दिखाई देती है।
उमर फारूक साहब, ये बताइए कि हसन रूहानी ने भारत और ईरान के रिलेशंस पर क्या बातें कही हैं?
भारत के साथ संबंधों पर उनका काफी जोर रहा। उन्होंने कहा कि ईरान और भारत के संबंध पहले ही से बड़े अच्छे हैं और उनमें गहराई लाई जा सकती है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच यात्रा को आसान बनाने की जरूरत है। ईरान इसके लिए तैयार है कि वीजे के जो कायदे हैं उनको और आसान किया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग दोनों दिशाओं में आ जा सके। चाबहार बंदरगाह का उन्होंने जिक्र किया जिस पर वो कल शनिवार को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करने वाले हैं।
ایران اعلام می کند که از طریق راه و مسیر ترانزیت برای
وایا چابهار پورت
برای افغانستان
اور ہندوستان کی عوام اپنے ٹرانزٹ کی سہولت کے ذریعے افغانستان، مرکزی ایشیا اور یورپ کو آسانی کے ساتھ راہ کو حاصل کر سکتے ہیں۔
انہوں نے کہا تھا کہ اس بندرگاہ کے مادھیم سے بھارت کے ساز و سامان جو افغانستان اور سینٹرل ایشیا تک جا سکیں گے اور اس میں مدد کر کے ایران کو بہت خوشی ہوگی۔ تو کل ملا کے صدر حسن روحانی کی جو یاترا حیدرآباد کی رہی ہے وہ سارجنک استر پر کافی بڑا گہرا اثر اس کا پڑا ہے۔ سنی مسلمان خوش ہیں کہ وہ ان کی مسجد میں آئے تھے اور شیعہ خوش ہیں کہ ایک سنی مسجد کے اندر، اتنی بڑی مسجد کے اندر ان کا سواگت کیا گیا، ان کی بات سنی گئی۔
عمر فاروق بتا رہے تھے حیدرآباد میں حسن روحانی جو کہ ایران کے راشٹرپتی، انہوں نے کیا کہا۔ اب بتاتے ہیں آپ کو کل کیا ہے انڈیا بول کا وشے۔
अयोध्या से रामराज्य रथ यात्रा शुरू हो चुकी है जो कई राज्यों से होती हुई रामेश्वरम जाकर संपन्न होगी। रथ यात्रा का आयोजन वैसे तो एक स्वयंसेवी संस्था कर रही है लेकिन माना जा रहा है कि इसके पीछे राजनीतिक कारण भी छिपे हुए हैं। क्या इस रथ यात्रा से सत्तारूढ़ बीजेपी को आगामी लोकसभा चुनाव में फायदा पहुंचेगा? यही है इस बार बीबीसी इंडिया बोल का विषय। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए 17 फरवरी शनिवार शाम 7:30 से 8 बजे के बीच मुफ्त फोन करें 1811-7000 और 1811-7001 पर।
नब्बे के दशक में संजय मांजरेकर की गिनती भारत के तकनीकी रूप से सबसे सक्षम बल्लेबाजों में होती थी। जब उन्होंने 1996 में अचानक क्रिकेट को अलविदा कहा तो कई क्रिकेट पंडितों ने कहा कि उनमें करीब 3 साल की क्रिकेट बची थी। पिछले दिनों उनकी आत्मकथा प्रकाशित हुई है इम्परफेक्ट, जिसमें उन्होंने अपने क्रिकेट जीवन के महत्वपूर्ण प्रसंगों पर रोशनी डाली है। आज की विवेचना में रेहान फजल नजर दौड़ा रहे हैं संजय मांजरेकर के क्रिकेट जीवन पर।
Slow ball, and he's got hold of that. It'll go all the way. That's a big one. That's 6. Just what's needed. Sanjay Mandrekar picks up Mervyn.
ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ छक्का मारते हुए संजय मांजरेकर 80 और 90 के दशक में दो महान खिलाड़ियों सचिन तेंदुलकर और अनिल कुंबले का उदय हुआ था। लेकिन ये एक ऐसा समय भी था जब कई प्रतिभाशाली क्रिकेटर उन ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच पाए जिनकी एक समय उनसे उम्मीद की जा रही थी। उनमें से एक थे संजय मांजरेकर। 1996 में जब अचानक उन्होंने क्रिकेट से संन्यास लिया तो क्रिकेट पंडितों ने एक स्वर में कहा कि उनमें कम से कम 3 साल की क्रिकेट और बची थी। संजय मांजरेकर के करियर को नजदीक से देखने वाले गौतम चिंतामणि बताते हैं,
जब एक कप स्पोर्ट्समैन की बात करते हैं तो उनका टैलेंट, उनका कैलिबर तो होता ही है, बट जब टीम गेम होती है तो बाकी जो बेंच स्ट्रेंथ बनती रहती है उससे भी एक स्पोर्ट्समैन की जिंदगी पे काफी गहरा असर पड़ता है। संजय मांजरेकर कुछ साल और क्रिकेट जरूर खेल सकते थे, इंटरनेशनल लेवल पे खेल सकते थे, लेकिन भारत की टीम में उस टाइम तक पोस्ट 96 अगर आप देखें सौरभ गांगुली और राहुल द्रविड़ के आने से, वो जो स्लॉट संजय मांजरेकर के लिए था उसमें जो यंग टैलेंट आ गया था द्रविड़ और गांगुली का, उसने मेरे को लगता है कि थोड़ा सा आगे की राह मुश्किल कर दी होगी संजय मांजरेकर के लिए।
संजय मांजरेकर ने हाल ही में प्रकाशित अपनी आत्मकथा का नाम इम्परफेक्ट रखा है, इसका अर्थ है दोषपूर्ण। मैंने संजय मांजरेकर से पहला सवाल यही पूछा कि इसकी वजह क्या थी।
मेरी एक जो ट्रेट है वो परफेक्शनिज्म की एक ट्रेट है कि हर चीज एकदम परफेक्ट होनी चाहिए, 10 out of 10। तो क्रिकेट करियर प्लेइंग डेज में भी मेरी कोशिश वही थी कि सब कुछ परफेक्ट हो, यानी अगर मैंने सब कुछ सही किया, अगर 100-200 रन भी किए हो और उसमें 3-4 गलत शॉट्स अगर लगे हो तो उस पे मैं ज्यादा विचार करता था बजाय एंजॉय करना वो 100 या 200। तो ये जो परफेक्शन की जो खोज थी ये अभी मुझे पता चलता है कि एक बड़ी खोट होती है, यही मेरी इम्परफेक्शन है, इसलिए वो किताब का नाम इम्परफेक्ट।
संजय मांजरेकर भारत के महान बल्लेबाजों में से एक विजय मांजरेकर के पुत्र हैं। एक बार किसी ने टाइगर पटौदी से पूछा कि आपकी नजर में भारत का अब तक का तकनीकी रूप से सबसे सक्षम बल्लेबाज सुनील गावस्कर हैं या सचिन तेंदुलकर। सवाल पूरा होने से पहले ही टाइगर ने जवाब दिया था विजय मांजरेकर। लेकिन आपको जानकर ताज्जुब होगा कि इन्हीं विजय मांजरेकर का बेटा संजय मांजरेकर उनसे थर्राया करता था। एक बार उन्होंने संजय से कहा कि वो उनकी नेट प्रैक्टिस देखने मैदान पर आएंगे। संजय डर के मारे उस दिन प्रैक्टिस पर ही नहीं गए।
ये थोड़ा सा माहौल उस जमाने में काफी कॉमन था कि बच्चे अपने पिताजी से डरते थे, लेकिन मेरा थोड़ा सा और भी अलग था क्योंकि मेरे पिताजी बेचारे क्रिकेट को उन्होंने अपना जीवन बनाया था और जब क्रिकेटर करके रिटायर हो गए तो उसके पश्चात उनको थोड़ा सा एक कंफ्यूज, थोड़े से गुम हो गए असली दुनिया में, क्योंकि वहां पर उनको एक अपनी जगह नहीं मिली एज अ नेक्स्ट क्रिकेटर। तो वो थोड़ा सा कंफ्यूजन, थोड़ा सा बिटरनेस या फ्रस्ट्रेशन जो होता है उनके लाइफ में आया था और उसका प्रभाव थोड़ा सा परिवार पे पड़ रहा था, तो इसीलिए वो डर थोड़ा ज्यादा था।
विजय मांजरेकर को क्रिकेट खिलाड़ियों को अपने घर खाने पर बुलाने का शौक था। प्रसन्ना, गावस्कर, विश्वनाथ, चंद्रशेखर और रोहन कन्हाई जैसे कितने ही खिलाड़ी उनके घर आया करते थे।
मेरे पिताजी एक्चुअली बहुत भी अच्छे क्रिकेटर थे, लेकिन कोई अगर अच्छा खिलाड़ी हो तो उनमें वो जेलसी या एनवी जो होता है वो नहीं था और पूरी तरह वो उनके फैन बन जाते थे। तो जो भी क्रिकेटर अगर कामयाब हो जाए, स्टार बन जाए, तो उनको बहुत गर्व लगता था कि उनको अपने घर पे बुलाए, खाना खाने के लिए बुलाए। तो मेरा काम यही होता था कि उनको गाड़ी से जब वो उतरे, जो हमारा घर मेन रोड पे था, तो एक छाता लेके उनको थोड़ा सा कवर करे, लोग ना देखे, बहुत ही बिजी रोड था गोखले रोड दादर में।
अपने पहले ही टेस्ट में बाउंसर से घायल होने के बावजूद मांजरेकर ने उसी वेस्टइंडीज के खिलाफ उन्हीं के यहाँ जाकर शतक लगाया था, लेकिन 1992 में ऑस्ट्रेलिया दौरे में उनका प्रदर्शन आशानुरूप नहीं रहा था। 1996 आते आते वो भारतीय टीम में अपना स्थान खो बैठे थे।
कहते हैं कि वो टेक्निक पे इतना ध्यान देते थे कि कहीं नेचुरल जो उनका इंस्टिंक्ट था खेलने का वो मार खा गया टेक्निक के चलते। मुझे नहीं लगा कि कोई ऐसा प्लेयर उस जमाने में आया हो जो टेक्निकली इतना साउंड। मेरा तो ये कहना है कि ये द्रविड़ से पहले के द्रविड़ हैं। टेक्निक पे उनका इतना ध्यान रहा कि बाकी सारी चीजें सेकेंडरी हो गई। कई लोग ये जानते नहीं होंगे कि संजय मंजरेकर की एक डबल सेंचुरी है और चार सेंचुरीज हैं, और चारों की चारों सेंचुरी जो उन्होंने बनाई है वो भारत से बाहर टेस्ट खेलते हुए बनाई है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है।
मंजरेकर फेसिंग मलिक, नेट बॉल इज शॉर्ट एंड इट्स गोइंग टू बी सिक्स एंड मंजरेकर पोजीशन हिमसेल्फ ब्यूटीफुली एंड इट्स गॉन फॉर सिक्स।
संजय मंजरेकर के सबसे बड़े हीरो इमरान खान हैं। उनकी हर अदा उनको पसंद थी, यहाँ तक कि उनकी गालियां भी। एक बार इमरान ने वकार यूनुस को लगभग झिड़कते हुए पूछा था, विक्की ये कौन सी गेंद तुमने कर दी? वकार का जवाब था, मैं इन स्विंगर डालने की कोशिश कर रहा था। इमरान ने चिल्लाकर वकार से कहा था, अगली बार ऐसा करने से पहले मुझसे पूछ लेना।
एक तो देखने में बहुत खूबसूरत है, तो मैं एक उनके लुक्स का फैन था, उनकी बोलिंग एक्शन जिस तरह से वो बोलिंग करते थे उसका मैं फैन था, वो भी मुझे बहुत पसंद आता था। फिर जब मैंने उनके साथ खेला और उनको थोड़ा सा नजदीक से देखा तो और भी वो मेरे नजर में वो उठे। एक तो अच्छे एजुकेटेड इंसान है, तो उनकी सोच बहुत अच्छी होती थी। जब मैंने उनके साथ स्टूडियो शो किया तो पता चला कि क्रिकेट के बाहर का जो इन्फॉर्मेशन होता है या जो नॉलेज होती है वो भी उनकी बहुत अच्छी थी। पॉलिटिक्स की नॉलेज अच्छी थी, पॉलिटिकल साइंस उन्होंने किया था। फिर इंडिया पाकिस्तान जब हमारी सीरीज हो गई तो उन्होंने खुद अपने आप इंडिविजुअली डिसाइड किया कि यहाँ पर न्यूट्रल अंपायर होंगे, इंग्लैंड के अंपायर होंगे, ताकि ये कोई ना कहे कि पाकिस्तान ने चीटिंग करके ये सीरीज जीता है। जब टीम स्ट्रगल करती थी तो खुद सामने पहले आते थे और जो कम खिलाड़ी थे उनको प्रोटेक्ट करते थे।
1996 के विश्व कप के सेमीफाइनल में ईडन गार्डन में श्रीलंका के हाथों हुई हार का संजय मांजरेकर ने बहुत मार्मिक चित्रण खींचा है। वो लिखते हैं कि हार के बाद डेसी, जो कि विनोद कामली का दूसरा नाम है, सरेआम बीच मैदान में रो रहे थे।
एक्चुअली उस मैच के पहले हमने पाकिस्तान को हराया था, तो थोड़ा सा इजी हमने वो मैच को लिया शायद, और ऐसे ही थोड़ा सा फ्लो में खेले और गलती कर बैठे पिच की। और मैं तो उस टीम में 5 या 6 नंबर पे खेलता था, तो मैं ज्यादा जाके पिच देखता नहीं था, क्योंकि पिच अगर देखना है तो ओपनर्स को देखना है, क्योंकि उनको जाके सीधा खेलना है। लेकिन जब ये निर्णय लिया भारत ने कि वो पहले फील्डिंग करे, तो मात्र सिद्धू मुझे याद है वो कह रहे थे कि नहीं ये गलत डिसीजन है। वैसा पिच था कि थोड़ी देर में वो एकदम ड्राई होके बिखर गया, लेकिन ऐसा भी होता है कि जब अच्छी पार्टनरशिप होती है तो फिर बॉलिंग पिच उतना इम्पोर्टेंट नहीं हो जाता। और वो सचिन और मेरे में जो पार्टनरशिप हो गई दूसरे विकेट के लिए, तब तो बिल्कुल लग नहीं रहा था कि ये पिच बहुत खतरनाक है या आगे जाके रन बनाना मुश्किल होगा। लेकिन विकेट्स का ये क्रिकेट में हमेशा होता है कि अगर विकेट जब गिरती है तो उसके वजह से जो प्रेशर आते हैं बल्लेबाजों के ऊपर, तो वो भी उस मैच में देखने को मिला।
संजय मांजरेकर टीम इंडिया के अपने साथी मनोज प्रभाकर की क्रिकेटिंग सोच के भी कायल है। मनोज जब भारत की पारी की शुरुआत करते थे तो जानबूझकर डेविन मालकम और ब्रायन मैकमिलन को बाउंसर फेंकने की चुनौती देते थे। इसका मतलब ये होता था कि वो बोल्ट या LBW आउट नहीं हो सकते थे।
अगर मनोज प्रभाकर ने गलतियां की जो भी हुआ उनके साथ आगे जाकर, एक उनमें खूबी भी ये थी, उनके जैसा फाइटर मैंने देखा नहीं। दिलेर बहुत क्रिकेटर थे, जो क्रिकेटर एक्चुअली टेस्ट मैच में ओपनिंग बैटिंग और ओपनिंग बॉलिंग करते थे, और एक दो टेस्ट मैच में नहीं काफी बार उन्होंने किया, और भारत के बाहर भी उन्होंने किया, तो उस चीज की दाद देनी होगी। अजहरुद्दीन की भी वही बात मैंने की है कि अगर उनमें थोड़ी सी कमजोरियां थी कप्तान के हिसाब से या उनके ऊपर जो इल्जाम लगाए थे वो सब चीजें बाहर आई, तो ये खूबी भी थी कि बहुत ही चैरिटेबल इंसान थे, लोगों को मदद करने की उनमें हमेशा एक लालसा होती थी।
संजय मांजरेकर उस समय के ड्रेसिंग रूम माहौल का भी चित्रण करते हुए बताते हैं कि टीम मीटिंग में रणनीति पर शायद ही कोई चर्चा होती थी।
टीम मीटिंग जो थी एक फॉर्मेलिटी जैसे लगती थी कि कल मैच है तो भैया टीम मीटिंग होनी चाहिए। टीम मीटिंग थी इसलिए सब एकदम फॉर्मल रूप में हो जाते थे, इंग्लिश भाषा हो जाती थी ऑफिशियल लैंग्वेज टीम मीटिंग की, तो वो मुझे कभी समझ में नहीं आता था कि वो ऐसा क्यों है, क्योंकि सीधी कोई अगर इंग्लिश में बात करना हो तो थोड़ा सा भारत में इंग्लिश हमारी पहली लैंग्वेज है नहीं, तो मन की जो बात थी वो ऐसे खुल के नहीं आती थी। कभी कभी
बहुत हमको मजा भी आता था कि क्या हो रहा है टीम मीटिंग में। अजहरुद्दीन थोड़े से सॉफ्ट स्पोकन आदमी थे तो एकदम लो वॉल्यूम में बात करते थे। कभी कभी ऐसा होता था कि वो बात कर रहे और किसी को सुनाई भी नहीं दे रहा, लेकिन हम सब ऐसे मुंडी हिला रहे थे कि ऐसे दिखाने को कि हाँ ठीक है आप जो कह रहे हैं हमको पता चल रहा है।
उस टीम में वरिष्ठ खिलाड़ियों की भीड़ थी। एक समय में तो भारतीय टीम में 6 पूर्व कप्तान खेल रहे थे। नतीजा ये होता था कि कई बार भारतीय टीम पहले गेंदबाजी करने का फैसला करती थी क्योंकि वरिष्ठ खिलाड़ी पहले नई गेंद खेलना नहीं चाहते थे।
हम सब सोचते थे कि ये क्यों ऐसा कर रहे हैं। जब कमेंटेटर्स कहते थे कि इस पिच पे पहले बल्लेबाजी करनी चाहिए तो सडनली देखा कि इंडियन टीम फील्डिंग करने उतर। अब अगर आप एक स्पेशलिस्ट प्लेयर हैं, आप टीम में आते हैं किसी कारणवश आते हैं, अगर आप वन डाउन हैं, अगर आप ओपनर हैं, तो वो कैपेबिलिटी है जो आपको टीम में लेके आई है। क्योंकि जब सिलेक्शन हो रहा था आपका, जब चयन किया जा रहा था, तो दो लोगों को देखा गया और दो में से समझा गया कि इस पर्टिकुलर चीज के लिए ये बल्लेबाज या गेंदबाज ठीक है, इसको ले लेते हैं। अब अगर आप उसी को चेंज कर दें किसी भी कारणवश, इमरजेंसी हो सकती है, कभी कभी हमने देखा था कि टीम का संतुलन बनाए रखने के लिए द्रविड विकेट कीपिंग भी किया करते थे, सो वो एक्सेप्शंस हो सकते हैं। बट अगर आप एक स्पेशलिस्ट बैट्समैन हैं, अगर आप उसी को चेंज कर दें, तो कहीं ना कहीं यंग प्लेयर जो है, मुझे नहीं लगता कि उस जमाने में यंग प्लेयर जहां पे स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की इतनी बातें हुआ करती थी भारत में, रेडी होते उस चेंज के लिए। कुछ लोग हैं जो शायद अडेप्ट कर पाए थे, जैसे रवि शास्त्री को अगर आप देखें, बट रवि शास्त्री एक प्लेयर होने के अलावा ही ऑल्सो हैड अ थिंकिंग माइंड, जिसे क्रिकेटर्स माइंड कहा जाता था। मे बी मंजरेकर में वो माइंड था, लेकिन वो उतना डेवलप नहीं हो पाया जब उन्होंने खेलना शुरू किया।
क्रिकेट से ज्यादा संजय मांजरेकर दीवाने हैं संगीत के। किशोर कुमार के प्रति उनकी दीवानगी इस हद तक है कि उन्होंने उनके बंगाली गीतों को अपनी आवाज में रिकॉर्ड किया है।
ओरे मोन पागल तुई कैनो के दे मोरी, पौरुष पाथर खुजते गिये बार बार हारी।
सिंगिंग ये बहुत सालों से मेरे साथ रहा है। मैंने स्कूल में भी इंटर स्कूल कंपटीशन में मैंने भाग लिया है, तब से मुझे गाने का शौक है। रिटायरमेंट के बाद थोड़ा सा वक्त ज्यादा मिला तो वो मैंने जो मेरी हॉबी थी उसको मैंने थोड़ा सीरियसली लिया। एक सुरेश वाडकर के घर में एक फंक्शन था, वहां पर मैंने जब गाया और मैंने देखा कि रिस्पांस बहुत ही अच्छा था। वहां पर अच्छे अच्छे लोग थे गाने वाले, शंकर एहसान लॉय थे, सुरेश वाडकर जी खुद थे, तो उन्होंने मुझे एनकरेज किया कि थोड़ा सा ये सीरियसली ले लो। उसके बाद मैंने काफी प्रैक्टिस की गाने की, 6-8 महीना मैंने बेसिक क्लासिकल सिंगिंग का भी मैंने लेसन लिए। किशोर कुमार मेरे आइडल रहे क्योंकि उनकी एक खासियत यह है कि बहुत ही टैलेंटेड इंसान है, लेकिन हमेशा अपना 50% या 40% देते थे क्योंकि उनको लगता था कि इतना काफी है। इतना मैंने उनका मैं फैन या भक्त रहा हूं कि मैंने उनके रविंद्र संगीत के गाने भी सुने और हर उनका जो बंगाली में गाना है वो मुझे एक्चुअली बाय हार्ट पता है।
आपका फेवरेट किशोर कुमार का सॉन्ग?
भवरे की गुंजन, रात कली।
रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई, सुबह को जब हम नींद से जागे आँख तुम्हीं से तार हुई।
रेहान फजल, बीबीसी दिल्ली।
संजय मांजरेकर के क्रिकेट करियर की कहानी सुना रहे थे रेहान फजल। इस कार्यक्रम को यदि आप पॉडकास्ट पर सुनना चाहते हैं, रिकॉर्ड करना चाहते हैं, तो पॉडकास्ट का बटन आपके साथ है जहां पर आप रेहान फजल की सारी विवेचना डाउनलोड कर सकते हैं। कार्यक्रम में अब क्रिकेट की खबरें। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच वनडे चल रहा है सेंचुरियन में और बस मैच लगभग खत्म होने वाला है। राकेश शर्मा मौजूद है, मैच का हाल बता दीजिए पहले।
जी, सबसे पहले बता दूं कि दक्षिण अफ्रीका की पारी लगभग खत्म होने वाली है क्योंकि
9 विकेट गिर गए हैं,
198 रन उन्होंने बना लिए हैं। क्रीज पर फिलहाल जो अंतिम बल्लेबाज इस वक्त बचे हुए हैं, लुंगी नगेडी खेल रहे हैं, जिन्होंने खाता फिलहाल नहीं खोला है। साथ में हैं पहल कुवाओ जो 28 रन बनाकर खेल रहे हैं। और बता दें कि भारत ये सीरीज़ पहले ही 4-1 से अपने नाम कर चुका है और उसकी कोशिश है कि इस ऐतिहासिक सीरीज़ में अगर वो 5-1 से अंत करता है तो ये उसके लिए बहुत बड़ी बात होगी।
भारत का स्कोर क्या था?
जी, दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 198 रन 9 विकेट के नुकसान।
बहुत बहुत शुक्रिया राकेश शर्मा। और अब मुख्य समाचार।
बीबीसी समाचार। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार को आज निर्देश दिया कि वो अपने अंतर्राज्यीय बिलीगुंडलू बांध से कावेरी नदी का 177.25 टीएमसी पानी तमिलनाडु के लिए छोड़े। पंजाब नेशनल बैंक धोखाधड़ी मामले के बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने हीरा व्यापारी नीरव मोदी और उनके कारोबारी साझेदार मेहुल चौकसी का पासपोर्ट 4 हफ्तों के लिए निलंबित कर दिया है। बीबीसी समाचार।
तो बीबीसी हिंदी सेवा की दूसरी सभा दिन भर के इस अंक में बस इतना ही। आज स्टूडियो संभाल रहे थे राजेश चौहान, सुबह 6:30 बजे नमस्कार भारत कार्यक्रम लेकर हमारा उपस्थित होना तय है। मोहनलाल शर्मा को समस्त साथियों के साथ विदा दें। bbchindi.com पर आए जो है आपके साथ। नमस्कार।